समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर और आकाशवाणी के अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज मैगजीन आज सवेरे। आज के इस अंक के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और साथ हैं तन्वी खुराना। नमस्कार तन्वी।
नमस्कार देवेंद्र, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज। वेल यस, दिस इज अ न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे एंड टुडे इज 8th ऑफ जनवरी 2026 एंड इट्स अ थर्सडे। सो जस्ट वांट टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी थर्सडे एंड इट्स अ वेरी कोल्ड मॉर्निंग। सो हाउ वॉज द वेदर दिस मॉर्निंग देवेंद्र?
बहुत ठंडा, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की शिकायतें थी कि इस बार सर्दी कम पड़ रही है, लेकिन अब लोग कह रहे होंगे कि बस
एब्सोल्युटली नो वन कैन कंप्लेन नाउ।
जी,
सो लेट्स बिगिन आवर प्रोग्राम विद द न्यूज़ हेडलाइंस, शैल वी?
जी, बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार ने भारत की जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस साल 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 दिनों की अवधि में घरों की गिनती का काम किया जाएगा। गृह मंत्रालय से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के तय कार्यक्रमों के अनुसार घरों की गिनती शुरू होने से 15 दिन पहले स्वयं की गिनती की सुविधा उपलब्ध होगी। देश में पहली बार डिजिटल तरीके से जनगणना की जाएगी। इसके अंतर्गत ये आंकड़े एंड्रॉयड मोबाइल के साथ iOS वर्जन के लिए भी एकत्रित किए जाएंगे। जनगणना का आंकड़ा जमा करने के लिए 30 लाख कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। इन कर्मचारियों में एन्यूमेरेटर, सुपरवाइजर, मास्टर ट्रेनर, चार्ज ऑफिसर और प्रधान या जिला जनगणना अधिकारी होंगे। ये लोग आंकड़े एकत्रित करने के साथ ही निरीक्षण और जनगणना के संचालन की निगरानी करेंगे। जनगणना दो चरणों में होगी। पहले चरण में अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच घरों की सूची बनाने के साथ ही इसकी गणना की जाएगी। दूसरे चरण के अंतर्गत फरवरी 2027 में जनसंख्या की गणना शुरू होगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर और बर्फ से ढके हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के लिए जनसंख्या की गणना इस साल सितंबर में की जाएगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने की 12 तारीख को 11,718 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से भारत की जनगणना 2027 कराने की योजना को मंजूरी दी थी। इसके अलावा राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने पिछले साल 30 अप्रैल को एक बैठक में इस जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का फैसला किया था।
Prime Minister Narendra Modi has said that India's reform express continues to gain momentum as country's GDP is estimated to grow at 7.4% during current fiscal compared to 6.5% during last financial year. Reacting to the figures, Prime Minister said that the growth outlook is being driven by the NDA government's sustained investment push and demand-led policy measures. In a social media post, Mr. Modi said efforts across infrastructure development, manufacturing incentives, digital public goods and ease of doing business are aimed at realizing the vision of a prosperous India. National Statistics Office NSO data showed that strong performance in the services sector remains a key growth driver. Financial services, real estate, professional services and public administration are projected to grow by 9.9% at constant prices in the current fiscal.
अमेरिका में फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत जारी किए गए दस्तावेजों से पता चलता है कि पिछले साल पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को हिला दिया था। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने मदद के लिए अमेरिका से गुहार लगाई थी और बदले में अधिक निवेश, विशेष छूट और जरूरी मिनरल्स की पेशकश की थी। दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी राजनयिकों और रक्षा अधिकारियों ने ईमेल, फोन कॉल और आमने सामने की मुलाकातों के जरिए कई अमेरिकी अधिकारियों और बिचौलियों और यहां तक कि अमेरिकी मीडिया से भी 50 बार से ज्यादा संपर्क किया। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले का भारत का जवाब था, जिसमें भारत ने 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कई आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया था। इसमें बहावलपुर, मुरीद के, मुजफ्फराबाद और कोटली आदि जगहों पर जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे संगठनों से जुड़े प्रशिक्षण शिविर, लॉन्च पैड, कमांड सेंटर और लॉजिस्टिक्स हब शामिल थे।
External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that France is among India's oldest strategic partners, and as two nations committed to multipolarity, working together is important for stabilizing the global politics at this stage. In his opening remarks during the meeting with Foreign Minister of France, Jean-Noël Barrot, in Paris, Dr. Jaishankar stated that continuous conversation is an important part of nurturing the relationship. He noted that the meeting is taking place in the backdrop of considerable global uncertainty, and it is natural that strategic partners consult very closely.
France is amongst our oldest strategic partner, the first in Europe. Our particular meeting takes place in the larger context of considerable global uncertainty. We must and we are making full use of the various mechanisms we have in different domains, a productive exchange of views on global and regional issues.
Prime Minister's flagship platform for proactive governance and timely implementation, Pragati, has marked a significant milestone with the successful conduct of its 50th meeting. Since its launch by Prime Minister Narendra Modi in 2015, Pragati has transformed governance by enabling real-time monitoring and resolution of key infrastructure projects and public grievances through direct prime ministerial review. The platform exemplifies cooperative federalism, bringing together the center, states and union ministries on a single digital interface. Over a decade, Pragati has helped accelerate decision-making, resolution of issues causing delay in key infrastructure projects, and instilled a strong culture of accountability. Today, in this special series, we take a look at the Solapur Super Thermal Power Station in Maharashtra.
The Solapur Super Thermal Power Station in Maharashtra has emerged as a key project in strengthening regional energy security and meeting the state's growing power demand. The project has been developed at a cost of around 11,406 crore rupees with a total installed capacity of 1,320 megawatts. It was taken up in March 2012. During the Pragati review held on 30th December 2015, construction work was at a foundational stage. The review enabled focused leadership and time-bound coordination, helping resolve critical issues and placing the project on a clear execution path. Prime Minister Narendra Modi directed the Chief Secretary of Maharashtra to resolve the rehabilitation issue by February 2016 and Power Secretary to complete both units of the project by January 2017. One of the major enablers addressed through Pragati was the 115-kilometer makeup water pipeline from the Ujjaini Dam, which proved crucial for timely progress. The Solapur Super Thermal Power Station has emerged as a strong example of the Pragati mechanism in accelerating complex infrastructure projects by resolving land, water, rehabilitation and transmission issues at an early stage. It was fully commissioned in March 2019. The Solapur Super Thermal Power Plant has ensured reliable power supply and supports industrial and economic growth across the region. With Dipendra Kumar, Suparna Saikya, Akashvani News, Delhi.
और खेलों में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 क्वालिफायर की घोषणा कर दी गई है। ग्लोबल क्वालिफायर टूर्नामेंट के दौरान 10 टीमें टूर्नामेंट में आखिरी चार टीमों में जगह बनाने के लिए मुकाबला करेंगी। ये मैच 14 जनवरी से 1 फरवरी तक नेपाल में खेले जाएंगे। ये मैच काठमांडू के त्रिभुवन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड और अपर मुल्पानी क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाएंगे। इस महीने की 14 तारीख से कुल 10 वार्म अप मैच निर्धारित किए गए हैं। प्रमुख समाचारों के बाद आज सवेरे में अब समय है महानगरों की खबरों का, तो आइए जानते हैं चेन्नई से क्या खबरें हैं।
yes.
तन्वी के पास जी।
So Devendra, let's begin with Chennai. Like you said, Pattale Makkal Kachchi, PMK, has joined National Democratic Alliance, NDA, ahead of Tamil Nadu Assembly elections. AIADMK General Secretary Edappadi Palaniswamy announced the inclusion of PMK in NDA at a press briefing in Chennai alongside PMK Chief Ambumani Ramadas. AIADMK General Secretary said that they are already in an alliance with the Bharatiya Janata Party, BJP, and expressed the possibility of including more parties in their bloc. Moreover, PMK President Ambumani Ramadas alleged that people in Tamil Nadu are very angry with the ruling party DMK, and so the AIADMK-led alliance will form the government with a thumping majority.
We will contest this election under the leadership of the ADMK in Tamil Nadu. People of Tamil Nadu are very angry with the ruling party, the DMK. Women, safety, alcohol, substance abuse, farmers are very, very angry. Social injustice, all these things are there. And our alliance will come to power with a thumping majority.
We have some more news from Chennai itself. According to the Bar Council of India, a total of 69.21% of law graduates who wrote the All India Bar Examination on 20th of November last year have cleared the examination mandatory to file wakalats and appear in courts this year. Out of more than 2 lakh candidates, 1,74,386 candidates cleared the examination, the results of which were declared yesterday. The exam was conducted in 399 exam centres spread across 56 cities in the country.
जी और दिल्ली की खबरों की बात करें तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र आज आवाजों के जुगनू पहल की शुरुआत करेगा, जिसका उद्देश्य भारत की चुनिंदा प्रसिद्ध आवाजों को दस्तावेज करना और संरक्षित करना है। इस प्रकाशन को पुस्तक और ऑडियो दोनों स्वरूपों में जारी किया जाएगा, जिसमें रिकॉर्ड किए गए साक्षात्कार और प्रामाणिक सामग्री शामिल होंगी। इसमें 31 ऐसे व्यक्तियों की यात्रा को दर्शाया गया है जो आकाशवाणी, एफएम चैनलों, वॉयस ओवर इंडस्ट्री, प्रसारण और मंचीय कविता से जुड़े रहे हैं। आईजीएनसीए ने बताया कि यह प्रकाशन रेडियो और आवाज आधारित कहानी सुनाने की सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाता है, जो दर्शकों के साथ लंबे समय से भावनात्मक जुड़ाव रखता है। केंद्र ने यह भी बताया कि यह पहल सांस्कृतिक दस्तावेजीकरण तथा संरक्षण के उनके निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्र के सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी करेंगे और इसमें प्रसिद्ध कलाकार हरीश भिमानी, शम्मी नारंग और सोनल कौशल शामिल होंगे। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की वार्षिक सफाई के कारण आज और कल कई क्षेत्रों में जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। बोर्ड ने बताया कि आज ओल्ड सब्जी मंडी, बर्फखाना, शक्तिनगर, विजयनगर, रूपनगर, विश्वविद्यालय क्षेत्र, पुलिस लाइन क्षेत्र और आसपास के इलाकों में जल आपूर्ति बाधित रहेगी। वहीं शुक्रवार को हिंदूराव अस्पताल, सिविल लाइन क्षेत्र और चांदनी चौक तथा कश्मीरी गेट, सेंट स्टीफन अस्पताल, मोरी गेट और आसपास के क्षेत्रों में जल आपूर्ति प्रभावित होगी।
एंड मूविंग टुवर्ड्स बेंगलुरु, कर्नाटक एग्रीकल्चर मिनिस्टर एन चेलुरु वर्रस्वामी मेट यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान इन न्यू दिल्ली यस्टरडे, सीकिंग सपोर्ट फॉर वेरियस स्कीम्स इन द स्टेट। अकॉर्डिंग टू अ रिलीज बाय द कर्नाटक Agriculture Department, the minister has sought an additional 250 crore rupees from centre under PM Rashtriya Krishi Vikas Yojana and a similar sanction of 250 crore rupees under PM Per Drop More Crop sub-scheme. The state agriculture minister has also sought additional release of 9.45 crore rupees under detailed project report to promote sustainable agriculture. He has said that the state had to pay previous arrears of around 153 crore rupees under Krishi Vikas Yojana and hence falling short of funds in this year.
जी, और मुंबई का रुख करते हैं, जहां महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने आगामी नगर निगम चुनावों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण से गैर हाजिर रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नागरिक समाज के लोगों, पुलिस और चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री वाघमारे ने कहा कि चुनाव सुचारू रूप से कराने के लिए पोलिंग और गिनती स्टाफ की पर्याप्त तैनाती और समय पर प्रशिक्षण आवश्यक है। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को बताया कि उसने महादेव ऑनलाइन बुक और skyexchange.com से जुड़े अवैध बेटिंग ऑपरेशंस की जांच के सिलसिले में 91.82 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति अटैच की है। ये अटैचमेंट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002 के तहत किया गया है। इस मामले में अब तक करीब 2,600 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त या अटैच की जा चुकी है और 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उधर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत ही एक विशेष अदालत ने कहा है कि कथित बिटकॉइन स्कैम में व्यवसायी राज कुंद्रा के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत हैं। स्पेशल जज आरबी रोटे ने कुंद्रा और दुबई के बिजनेसमैन राजेश सतीजा को समन जारी कर इस महीने की 19 तारीख को कोर्ट में पेश होने को कहा है.
And about Hyderabad, the Telangana state government will host mega drone and hot air balloon shows along with its annual international kite and sweets festival during Sankranti festival season. The events will be held at multiple locations in Hyderabad this year. State Tourism Minister J. Krishna Rao announced this to the media that the drone show to be held at Gachibowli Stadium on 16th and 17th of this month will showcase a blend of sport, technology and culture, highlighting India's journey from traditional heritage to modern innovation. The hot air balloon show will take place from 16th to 18th of this month, featuring more than 15 hot air balloons flying above 2,500 feet. The morning balloon flights will be held on the outskirts of Hyderabad, while a night glow balloon show will be held at the parade grounds in Secunderabad.
Ji. और चलते हैं कोलकाता, जहां पश्चिम बंगाल के गंगा सागर मेले का आज उद्घाटन होगा. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मेले का शुभारंभ करेंगी. सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. त्वरित प्रतिक्रिया दल, तटरक्षक बल, राष्ट्रीय सुरक्षा बल, मानक सुरक्षा बल और स्वयंसेवकों को तैनात किया गया है. अग्निशमन और सेवा कर्मियों को भी 18 स्थानों पर 24 घंटे सेवा के लिए तैनात किया गया है और किसी भी स्थिति में प्रतिक्रिया देने के लिए 50 वाहन तैनात रखे गए हैं. मूरी गंगा नदी में घने कोहरे की स्थिति में दृश्यता बनाए रखने के लिए सभी मीनारों में फॉग लाइटें लगाई गई हैं. गंगा सागर मेला 17 जनवरी को संपन्न होगा. और अब महानगरों के मौसम का हाल श्रोताओं जान लेते हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज भी सुबह घना कोहरा छाए रहने का अनुमान मौसम विभाग द्वारा बताया गया है. वहीं अधिकतम तापमान 16 डिग्री और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, यानी दिन में भी कड़ाके की ठंड रहने के आसार हैं. मुंबई में आज आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, धुंध भी बनी रहेगी और न्यूनतम तापमान 20 अधिकतम 32 डिग्री रह सकता है. कोलकाता में सुबह के समय मध्यम कोहरा छाया रहेगा, अधिकतम तापमान 21 और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा सकता है. और तन्वी, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद में मौसम कैसा रहेगा?
चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन. द मिनिमम टेम्परेचर वाज 23 डिग्रीज एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 29 डिग्रीज. बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव मिस्ट. द मिनिमम टेम्परेचर वाज 16 डिग्रीज एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 27 डिग्रीज. हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई बट विद हेज. द टेम्परेचर विल हवर समवेयर बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 13 डिग्रीज एंड अ मैक्सिमम ऑफ 28 डिग्रीज सेल्सियस.
जी, और मौसम के बाद पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं आज के दिन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में.
सो लेट्स बिगिन विद 1790. यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन डिलीवर द फर्स्ट स्टेट ऑफ द यूनियन द एनुअल एड्रेस टू कांग्रेस.
जी, और वर्ष 1828 में संयुक्त राज्य अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई थी और 1867 में वर्षों के भेदभाव और गुलामी के बाद अफ्रीकी अमेरिकी पुरुषों को वोट देने का अधिकार दिया गया था.
इन द ईयर 1918 फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन अनाउंस्ड हिज 14 पॉइंट्स एंड आउटलाइन फॉर पीस फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर 1.
जी, और 1952 में जॉर्डन ने संविधान को अंगीकृत किया था.
In 1963, Leonardo da Vinci's masterpiece, the Mona Lisa, was exhibited for the first time in America at the National Gallery of Art in Washington, D.C.
1973 में सोवियत संघ के मानव रहित अंतरिक्ष मिशन लूना 21 को चंद्रमा की सतह पर अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था.
In 1996, the Baseball Writers Association of America failed to elect anyone for the Hall of Fame since no player garnered the 75% of votes necessary. And today is a special day as well. It's called Earth's Rotation Day, which is being observed today. And this day commemorates French physicist Léon Foucault's 1851 public demonstration proving that the Earth rotates on its axis using his famous pendulum.
जी, और साहित्य, संगीत, कला, समाज सेवा, खेल और जीवन दर्शन सामाजिक जीवन को नए आयाम देते हैं और ये विषय हमें प्रभावित और प्रेरित करते हैं और उन विभूतियों के कर्मों के चलते जो इसके पर्याय बन जाते हैं. तो श्रोताओं, आइए अब करते हैं स्मरण ऐसी ही विभूतियों का. इस क्रम में सबसे पहले याद कर रहे हैं ब्रिटिश भारत के सुप्रसिद्ध समाज सुधारक केशव चंद्र सेन को, जिनकी आज पुण्यतिथि है. ब्रह्म समाज के संस्थापकों में से एक केशव चंद्र सेन का जन्म 19 नवंबर 1838 को कोलकाता में हुआ था. प्रखर बुद्धि, तर्कशक्ति और विद्वता के लिए प्रसिद्ध केशव चंद्र सेन ने उत्साहपूर्वक समाज को संगठित किया। अपनी नव संहिता में केशव चंद्र ने लिखा, हमारा विश्वास विश्व धर्म है जो समस्त प्राचीन ज्ञान का संरक्षक है एवं जिसमें समस्त आधुनिक विज्ञान ग्राह्य है, जो सभी धर्म गुरुओं तथा संतों में एक रूपता, सभी धर्म ग्रंथों में एकता एवं समस्त रूपों में सातत्य स्वीकार करता है। केशव चंद्र सेन का निधन 1884 में आज के दिन यानी 8 जनवरी को हुआ था।
And we are talking about Galileo Galilei. Today is his death anniversary, an Italian astronomer, physicist and engineer, sometimes described as a polymath. He was born in the city of Pisa and he has been called the father of observational astronomy, modern era classical physics, the scientific method and modern science. He studied speed and velocity, gravity and free fall, the principle of relativity, inertia, projectile motion and also worked in applied science and technology, describing the properties of the pendulum and hydrostatic balances. With an improved telescope that he built, he observed the stars of the Milky Way, the phases of Venus, the four largest satellites of Jupiter, Saturn's rings, lunar craters, and sunspots. He also built an early microscope. And during this time, he wrote two new sciences in 1638, primarily concerning kinematics and the strength of materials.
जी, और आधुनिक भारत की राजनीति के एक प्रमुख नेता मधु लिमय को भी हम आज याद कर रहे हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन और बाद में पुर्तगाली शासन से गोवा की मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे एक प्रसिद्ध समाजवादी, एक प्रतिष्ठित सांसद, नागरिक स्वतंत्रता के चैंपियन, एक विपुल लेखक और देश के आम लोगों के हितों के लिए समर्पित थे। वे लोकतांत्रिक समाजवादी आंदोलन के एक गतिशील नेता थे और जीवन भर अपनी विचारधारा पर अडिग रहे। मधु लिमय 1964 से 1989 तक 4 बार लोकसभा के लिए चुने गए। वे भारतीय संविधान के जानकार, विश्वकोश थे और संवैधानिक मामलों के ज्ञाता थे, और संसद में उनके भाषण मील के पत्थर साबित हुए। उनमें न केवल विद्वता, परिपक्वता और समझ झलकती थी, बल्कि आम आदमी के हितों के प्रति उनकी चिंता और प्रतिबद्धता का भी प्रतिबिंब उनके भाषणों में दिखाई देता था। वे उत्कृष्टता के साथ एक बेजोड़ सांसद माने जाते हैं। और विश्व प्रसिद्ध ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी, ब्रह्मांड विज्ञानी, लेखक और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र के शोध निदेशक स्टीफन विलियम हॉकिंग को भी नमन कर रहे हैं, जिन्होंने 90% दिव्यांगता के बावजूद अपनी क्षमता का लोहा पूरी दुनिया को मनवाया। विलियम हॉकिंग मोटर न्यूरॉन डिजीज से पीड़ित थे, फिर भी वो न्यूटन और आइंस्टाइन की बिरादरी में शामिल हुए। उन्होंने अंतरिक्ष के बहुत से रहस्यों से पर्दा उठाया। हॉकिंग को ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांत को प्रतिपादित करने का श्रेय दिया जाता है। उनका जीवन कभी हार न मानने वाले हौसले और अदम्य इच्छा शक्ति की मिसाल है।
Absolutely. Stephen Hawking, a name we cannot forget. So let's hear a part of his speech that he made at MIT in September 1994, and he's talking about technology.
Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate. The fact that you are listening to me now shows what technology can do. Even if it does give me a Scandinavian or American accent. The main problem of communicating for people like me who can't speak is what is called the baud rate. That is, the rate at which information can be conveyed. Normal speech is between 120 and 180 words a minute. By contrast, a reasonable typist can do 40 to 60 words a minute.
हॉकिंग के जज्बे को लेकर पूरी दुनिया उन्हें नमन करती है। हॉकिंग का आईक्यू 160 था, जो उच्चतम स्तर है। हॉकिंग जब 21 साल के थे तो उन्हें एमियोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस नामक बीमारी की वजह से लकवा मार गया था। हॉकिंग को जब ये पता चला कि वे मोटर न्यूरॉन डिजीज से पीड़ित हैं तो उन्हें दुख जरूर हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। दरअसल उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि शेष जीवन को कैसे और किस मकसद के साथ जिएं। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, हालांकि उनके अंगों ने उनका साथ छोड़ दिया था और धीरे धीरे उनकी जुबान भी बंद हो गई थी, लेकिन अपने जज्बे के चलते आधुनिक विश्व के अग्रणी विज्ञानी बन गए।
and we're also remembering today Elvis Presley. Today is his birth anniversary. An American singer and actor referred to as King of Rock and Roll, he is widely regarded as one of the most culturally significant figures of 20th century. And before we move any further and talk about him, let's just hear one of the most famous tracks by him titled Jailhouse Rock.
Born through a party in the county jail.
Yes, we're talking about Elvis Presley, who made his debut titled Love Me Tender, and he has given multiple songs, be it Jailhouse Rock, Blue Hawaii, Viva Las Vegas, and many more. He won 3 Grammy Awards and he also received the Grammy Lifetime Achievement Award at the age of just 36.
नई कहानी आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर साहित्यकार मोहन राकेश को भी हम नमन कर रहे हैं। 8 जनवरी 1925 को जन्मे मोहन राकेश की प्रमुख कृतियों में आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस हैं। आषाढ़ का एक दिन के लिए उन्हें सन 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोहन राकेश ने नाट्य लेखन और उपन्यासकार के रूप में भी अपनी सशक्त पहचान बनाई। मोहन राकेश की डायरी सुविधा में हिंदी भाषा की सबसे सुंदर कृतियों में से एक मानी जाती है।
And today is also the birth anniversary of Saeed Jafri, a British Indian actor. His career covered film, radio, stage and television roles across 6 decades and more than 150 British, American and Indian movies. I'm sure you have seen one or the other movie by him, be it Shatranj Ke Khiladi, be it The Guru, The Deceivers and The Jewel in the Crown, Little Napoleons and even Ram Teri Ganga Maili or Henna. And let's just hear a dialogue from one of his films, Chashme Badur, where he played just a cameo role, but that left the entire audience a fan. And the title of the role was Panwala Lalan Mia.
Oh, Mia Professor, aaj kaise aana hua itne dino baad? Aha, to paise chukane aaye ho? To Mia, pehli tarikh ko bhi yehi batane aaye ho ki ab bhi hisab nahi chuka rahe? Mia, Allah kasam, yahan to sara kaam nek iraadon hi pe chal liya hai, samjhe? बीवी बच्चों को ये कह दूंगा कि खुश रहो, मेरे खरीदार पैसे नहीं देते मगर खुश रहो, जिनके इरादे नेक हैं।
श्रोताओं, हिंदी साहित्य के सेवक, हिंदी जगत को कई महत्वपूर्ण कृतियां देने वाले रामचंद्र वर्मा का भी स्मरण करते हैं। 1907 में बाल गंगाधर तिलक के मराठी पत्र केसरी के लिए रामचंद्र वर्मा ने हिंदी संस्करण में कार्य किया। 8 जनवरी 1890 को काशी में रामचंद्र वर्मा जी का जन्म हुआ। उन्होंने हिंदी, उर्दू, फारसी, मराठी, बंगला, गुजराती, अंग्रेजी आदि भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया और हिंदी साहित्य की विशेष रूप से उन्होंने सेवा की और हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित 5 खंडों का मानक हिंदी कोश रामचंद्र वर्मा जी के ही परिश्रम का फल था जो हिंदी साहित्य सम्मेलन से प्रकाशित हुआ।
And today is the birth anniversary of David Bowie, an English singer, songwriter and actor regarded as among the most influential musicians of the 20th century. He received particular acclaim for his works in 1970s. And let's just hear a wonderful track by him titled Space Oddity.
To ground control, I'm stepping through the door and I'm floating.
जानी मानी अभिनेत्री नंदा की आज जयंती है। 8 जनवरी 1938 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जन्मी नंदा ने हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया। सिने प्रेमी, चेहरे पर मासूमियत और सादगी भरी उनकी सुंदरता के कायल थे। इनके पिता विनायक दामोदर स्वयं मराठी फिल्मों के एक सफल अभिनेता और निर्देशक रहे। नृत्य और अभिनय का शौक नंदा को बचपन से था। नंदा ने 1965 में आई फिल्म जब जब फूल के लिए सहित अपने समय के मशहूर अभिनेता शशि कपूर के साथ कई यादगार फिल्मों में काम किया। इनकी जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। 25 मार्च 2014 को मधुर मुस्कान की धनी नंदा ने इस दुनिया को अलविदा कहा। उन पर फिल्माया गया ये गीत आपको सुनवाते हैं।
ये समा, समा है ये। किसी के इंतजार था, दिल ना चुरा ले कहीं मैं ना ना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे, ना ना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, बंधन है प्यार का आज हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से।
और इस खूबसूरत गीत के साथ ही श्रोताओं, अब हम चाहेंगे आपसे अनुमति आज सवेरे न्यूज मैगजीन को यहीं संपन्न करने की।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ वंडरफुल डे, नमस्कार।